दिन भर 11 अक्टूबर शुक्रवार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए ममल्लापुरम पहुंचे चीनी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। भारत चीन के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का क्या है मकसद?
इनफॉर्मल समिट से एक तो ये संकेत दिया जा रहा है कि दोनों देश चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है रेल की पटरी से उतर ना जाए और दोनों देशों को इस रिश्ते में एक मजबूती कायम करनी पड़ेगी।
विवेचना में आज कहानी अमिताभ बच्चन के महानायक बनने की।
इनकी जो पंक्चुअलिटी और जिस तरह से इनका जो बिहेवियर ये सब था उसने इनको जो है बहुत फायदा दिया, क्योंकि उसके पहले तो फिल्मों का ये था कि भैया एक्टर 12 बजे का दो बोलो तो 4 बजे आएंगे।
जानेंगे क्रिकेट का हाल भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग की तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अनौपचारिक मुलाकात हुई। यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इससे पहले जिनपिंग का चेन्नई एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया गया। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक 1-to-1 मीटिंग होनी है। शी जिनपिंग का ये दौरा करीब 48 घंटे का है। दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी अनौपचारिक मुलाकात है। पहली अनौपचारिक मुलाकात बैठक वुहान में हुई थी। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के नियंत्रण वाले इलाकों में तुर्की की सैन्य कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी रही। वहां से भीषण लड़ाई की खबरें मिल रही हैं। तुर्की के युद्धक विमानों ने सीरिया में कई ठिकानों पर निशाना बनाया। ताल अबियद और रास अल एन के कस्बों के ऊपर धुएं के गुब्बार उठते नजर आए। सहायता कर्मियों का कहना है कि ज्यादातर लोग शहर छोड़कर पलायन कर चुके हैं और जो रह गए हैं वो बेहद डरे हुए हैं। इस क्षेत्र का एकमात्र सार्वजनिक अस्पताल भी बंद करवा दिया गया है। यूएन का कहना है कि उसकी रिपोर्ट बताती है कि तुर्की की बमबारी ने पावर स्टेशनों और कई बांधों को भी प्रभावित किया है। तुर्की का कहना है कि वो कुर्द लड़ाकों को हटाकर एक सेफ जोन तैयार करना चाहता है। तुर्की इन कुर्द लड़ाकों को चरमपंथी मानता है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने सभी पक्षों से मानवीय कानून का पालन करने की अपील की है। पिछले 48 घंटों में उत्तरी सीरिया में संघर्ष के बढ़ने के परिणाम स्वरूप दसियों हजार लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है और इस संकट के बीच अन्य सैकड़ों हजार लोगों पर एक खतरा मंडरा रहा है। हम सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन की अपील करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि यूएनएचसीआर सहित सभी सहायता एजेंसियां इस मानवीय संकट में मदद के लिए नागरिकों तक पहुँच सकें। साल 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को दिया जाएगा। शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में उनके प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री अबी अहमद अली का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अबी अहमद ने इथोपिया में बड़े पैमाने पर उदारीकरण की शुरुआत की है। एक धमाके के बाद ईरान के एक तेल टैंकर में आग लग गई है। यह सऊदी अरब के समुद्र तट के पास हुआ। ये तेल जहाज ईरान की तेल कंपनी NOIC का है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब धमाका हुआ तो ईरानी जहाज सऊदी के तटीय शहर जिदा से 97 किलोमीटर की दूरी पर था। इराक के सबसे वरिष्ठ शिया मुस्लिम धर्मगुरु ने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान खून खराबे के लिए सरकार को दोषी ठहराया है। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ग्रैंड आयतुल्ला अली अल सिस्तानी ने प्रदर्शनकारियों पर सरेआम गोली चलाने में शामिल सुरक्षाकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार, नौकरियों की कमी और सार्वजनिक सेवाओं की कमी से नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे थे। अधिकारियों ने हिंसा के लिए अज्ञात स्नाइपरों को दोषी ठहराया है, लेकिन उन्होंने माना है कि अधिकारियों ने अत्याधिक बल का इस्तेमाल किया। इनके संदेश को उनके प्रतिनिधि अब्दुल मेहंदी अल करबलाई ने बताया। इराकी सरकार और उसके सुरक्षा अधिकारी बीते दिनों विरोध प्रदर्शन में हुए खून खराबे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। सरकार अब इस तरह की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। ये थे अब्दुल मेहंदी अल करबलाई के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दो दिवसीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए आज ममल्लापुरम पहुंच गए। यह अनौपचारिक शिखर सम्मेलन चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर ममल्लापुरम में हो रहा है, जिसे महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग ने अब से थोड़ी देर पहले ममल्लापुरम के ऐतिहासिक स्मारक पंचरथ का दौरा किया और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस भव्य अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का क्या उद्देश्य है, सुनिए इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
चेन्नई के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चेन्नई के एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरने के बाद थोड़े देर के लिए तंग होकर देखते ही रह गए। उनका स्वागत करने के लिए तमिलनाडु के शास्त्र नृत्य और लोक कला के कलाकार धूमधाम से नाचे और चार अनेक तरह के बाजे बजाए, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हर जगह रुककर हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। दो घंटे बाद जब वो ममल्लापुरम पहुंचे तो वो सूट में नहीं बल्कि शर्ट और पैंट में थे। चेन्नई से लाई हुई कार से जब वे उतरे तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। प्रधानमंत्री वहां वेष्टी यानी कि धोती, बुशर्ट और अंगवस्त्रम पहने हुए थे। इन दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? हमने यह सवाल ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी से पूछा। उन्होंने कहा,
ये मिसकैलकुलेशन या गलती से जो है आपस में ना भिड़ जाए, इसका मकसद ये है, या आपस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की का जिक्र किया गया है कि दोनों के बीच में जो है ये जो वार्तालाप है, समन्वय है, वो जारी रहना चाहिए हर हालत में।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने ममल्लापुरम में काफी देर तक वहां के स्मारकों का दौरा किया और अगले 24 घंटों में करीब 6 घंटे वो बातचीत करने वाले हैं। इन 6 घंटों में करीब 50 मिनट वो किसी अधिकारी के बिना मुलाकात करने वाले हैं। तो कश्मीर के विषय को छोड़कर किन किन विषयों पर दोनों नेता ध्यान दे सकते हैं? मनोज जोशी ने कहा,
एक सुझाव ये दिया गया था कि भारत चीन की जो सीमा है उसमें करीब 14 ऐसी जगहें हैं जहां पे कि दोनों के बीच में जो बॉर्डर का परसेप्शन है वो ओवरलैप करता है। वो कुछ क्लेम करते हैं, हम भी वही क्लेम करते हैं। तो ये एक सुझाव था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में दिया था कि ये ऐसे जो इलाके हैं वहां पे फोकस किया जाए। उस समय चीन जो है राजी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में बातचीत इस बार हो सकती है।
दोनों देशों के बीच एक और भी अहम मसला है व्यापार का और दोनों के मार्केट में अपना माल बेचने की सहूलियत। हुआवी की 5G टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया में काफी बहस हो रही है और अमेरिका ने हुआवी पर रोक लगा दिया है क्योंकि उसको शक है कि वो सुरक्षित टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस पर भारत किस तरह का रुख ले सकता है और इसके वजह से भारत और चीन के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? मनोज जोशी कहते हैं,
आप जानते हैं कि जहां तक अगर जियोपॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है वो अमेरिका के ज्यादा करीब है, पर जहां तक कि इकोनॉमिक कन्वर्जेंस की बात करते हैं, भारत और चीन जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लगभग ज्यादा मिलता है। तो पर ये हो नहीं सकता है कि जियोपॉलिटिकली आप जो है अमेरिका के साथ जाएं और इकोनॉमिकली आप चाइना के साथ जाएं।
इसका मतलब ये है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत कितनी भी अनौपचारिक हो वो बहुत ही नाजुक भी है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
पिछले साल चीन के वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी पहले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में आमने सामने थे। उस समय दोनों देशों के आगे डोकलाम और सीमा विवाद जैसे मुद्दे थे। वहीं इस बार भारत प्रशासित कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने का मुद्दा दोनों देशों के आगे है। आखिर भारत और चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के बहाने ही क्यों मिल रहे हैं, इससे क्या हासिल होता है, यही जानने के लिए मैंने चीनी मामलों की जानकार प्रोफेसर अलका आचार्य से बात की।
जैसे पिछला जो वुहान में पहला वाला जो इनफॉर्मल समिट हुआ था, उम्मीद यही थी कि जो एक तनावपूर्ण माहौल था और जिस तरह की एक स्थिति बढ़ रही थी, एक आमने सामने जो सेनाएं खड़ी थी, वो सिर्फ एक उच्च स्तर जो इनफॉर्मल लेवल पे बातचीत से जो टेंशन है उनको कम किया गया। उम्मीद ये थी कि ये सेकंड इनफॉर्मल समिट में बात आगे बढ़ेगी, वुहान स्पिरिट की जो बात हो रही थी, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि तनाव की स्थिति बन रही है और ये इस बार कश्मीर के मुद्दे को लेके और भी कई बातें हैं। तो इनफॉर्मल समिट से एक तो ये संकेत दिया जा रहा है कि दोनों देश चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है रेल की पटरी से उतर ना जाए और दोनों देशों को इस रिश्ते में एक मजबूती कायम करनी पड़ेगी, नहीं तो जितने भी मंसूबे हम बांध रहे हैं अपने दोनों देशों में विकास की और आधुनिकीकरण की और आगे बढ़ने की, उसमें एक अच्छी खासी रुकावट आ जाएगी। तो ये इनफॉर्मल समिट जो है वो एक संकेतात्मक जो पहलू होता है इनफॉर्मल मीटिंग्स का, सिंबॉलिक होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि इन मसलों को हम सॉर्ट आउट करेंगे बातचीत के जरिए।
अगर इसको फॉर्मल अगर बना दिया जाए और दोनों देशों की मीटिंग के बाद बाकायदा बयानात जारी हों, तो उस सूरत में क्या हर्ज है?
नहीं, फॉर्मल समिट तो ये होती है कि बहुत पहले से ये तय कर दिया जाता है कि कौन से समझौतों पे हस्ताक्षर होंगे, किस तरह के पॉलिसी जो निर्धारण होगी, तो वो एक कॉन्क्रीट पहलू रहता है फॉर्मल समिट में। इनफॉर्मल में ये है कि एक संकेत मिलेगा और उसके आधार पे जो अधिकारी लोग हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स डिप्लोमेट्स हैं वो फिर अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि सिग्नल जो है वो ये है कि हमें बातचीत करना है, हमें ये समस्याओं को का समाधान ढूंढना है।
क्या ये समझा जाए कि इंडिया चाइना के बीच में अभी कुछ तय नहीं है, उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्या इसको इस तरीके से समझा जा सकता है?
नहीं, ये तो सही है कि अभी तनावपूर्ण माहौल है रिश्तों के बीच में, जो जैसे आप देखिए एक घनिष्ठता बढ़ गई है, जिस तरह के आर्थिक या और राजनीतिक पहलू विश्व स्तर पे क्षेत्रीय स्तर पे जो बातचीत चल रही है वो अपनी जगह कायम है। उनमें भी कुछ कुछ जो जिसको कहते हैं ना हिचकियां आ रही हैं, उनको देखना है उनको किस तरह से सुलझाया जाए।
अनौपचारिक शिखर सम्मेलन से क्या हासिल होता है, अधिक जानकारी दे रही थी अलका आचार्य।
बीबीसी इंडिया बोल।
देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती की गिरफ्त में है, इस वजह से बेरोजगारी का संकट और गहरा सकता है। आखिर कैसे सुधरेगी हालत? इस शनिवार 12 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में होगी चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त कॉल करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
रुख करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर का, जहां अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 महीने बाद प्रशासन हालात सामान्य करने के लिए कोई ना कोई कदम उठा रहा है। अब घाटी में स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ और कदम उठाए जाने का ऐलान किया गया है। इन्हीं फैसलों के बारे में जानने के लिए शकील अख्तर ने श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
जिले के पहले से ही प्रशासन का प्रयास रहा है कि यहां पर जो है शांति प्रक्रिया को सक्रिय रूप से जो है शुरू किया जाए, और इसी प्रयास के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर आधारित एक पॉलिसी शुरू की गई है, जिसमें सिक्योरिटी सबसे प्रथम जो है महत्वपूर्णता है, और सिक्योरिटी में बॉर्डर सिक्योरिटी पहले आती है, क्योंकि बॉर्डर पर भारतीय सेना का कहना है कि पिछले 2 महीने से सबसे ज्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है, और बॉर्डर पर हर रोज तकरीबन हर 3 रोज में एक बार जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह वो भी आते हैं। कल तो एक साथ यहाँ चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिलोन और लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह जो है एक साथ उन्होंने दौरा किया अगली चौकियों का, क्योंकि पिछले 3 रोज से पुंछ में बालाकोट सेक्टर पे काफी ज्यादा फायरिंग हुई थी। तो एक तो इस सिक्योरिटी का जो है बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक है, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी में डीजीपी जो यहाँ के हैं उन्होंने पूरी पुलिस को सक्रिय कर दिया है कि वो शरारती तत्व जो होते हैं जो मार्केट खोलने से लोगों को रोकते हैं, डराते धमकाते हैं, उनको जो है बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अंतर्गत 4 ऐसे युवाओं को गिरफ्तार किया गया है बांडीपोरा जिले से, जिन पर आरोप है कि वो लोगों को डरा धमका कर हड़ताल को एनफोर्स कराते थे। दूसरा बिंदु इस जो है पॉलिसी का वो है लोगों तक पहुंचना और लोगों को आश्वासन दिलाना कि सब कुछ ठीक है। इसके अंतर्गत यहाँ आज सभी बड़े समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर जो है फुल पेज एडवर्टीजमेंट जो है प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें ये आश्वासन दिया गया है, लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास किया गया है कि ये जो धारा 370 है या 35 है इसको हटाने के बाद यहाँ प्रगति और उन्नति का एक नया दौर शुरू होने वाला है।
तो ये बताइए कि पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कई नेता जो कैद में थे उन्हें रिहा किया गया है, तो क्या वो पत्रकारों से या लोगों से बातें कर रहे हैं? कुछ बातें अंदर की सामने आ पाई हैं?
जी, कुल मिलाकर अब 5 लोग बाहर आए हैं, हालांकि ये ज्यादा प्रमुख नहीं है अपनी पार्टियों में, लेकिन विधायक रहे हैं सभी, इमरान अंसारी है, आबिद अंसारी है, नूर मोहम्मद शेख है, शोएब लोन है और यावर मीर है। ये लोग तो पत्रकारों से बात करने से कतराते हैं, हमने भी कोशिश की और वो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि इनको पेरोल पे बाहर छोड़ा गया है और इनसे एक बॉन्ड पे साइन लिया गया है जिसमें लिखा है कि वो कोई भी ऐसी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका मतलब प्रशासन ये ले ले कि इससे शांति भंग हो सकती है।
ये थे रियाज मसरूर। श्रोताओं, अब समय है विवेचना का। अपनी दमदार आवाज और अभिनय के दम पर दर्शकों को दीवाना बनाने वाले अमिताभ बच्चन ने अभिनय की दुनिया के हर उस शिखर को छुआ है जिसकी वजह से उन्हें सदी का महानायक और बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। पिछले दिनों उन्हें इस साल के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन की 77वीं सालगिरह पर उनके जीवन के रोचक प्रसंगों पर रोशनी डाल रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
मिस्टर विजय, अब तो ये सौदा हो गया। एक बात कहूं आपसे, ये बिल्डिंग आप महंगी ले गए। अगर आप कहते तो शायद मैं 1-2 लाख रुपए कम कर देता। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता।
धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता।
अच्छा, ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में?
आज से 20 बरस पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ।
ये एक विडंबना थी कि अपनी डायलॉग डिलीवरी से पूरे भारत को दीवाना बनाने वाले अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन में असफल घोषित किए गए थे। ये भी एक दिलचस्प तथ्य है कि अपनी शुरुआती फिल्म रेशमा और शेरा में सुनील दत्त ने उन्हें एक गूंगे का रोल दिया था। अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी में उन्हें एक मुस्लिम युवा का रोल दिया, वो भी उनके पिता हरिवंश राय बच्चन से पूछकर। योजना आयोग की पूर्व सदस्य और मशहूर लेखिका डॉक्टर सैयदा सैयदीन हमीद बताती हैं।
6 हिंदुस्तानी तो उनको मिल गए थे, अब सातवें की उनकी तलाश थी। तो इनका एक यंग असिस्टेंट था इंदर राजानंद का बेटा, तो वो उन्होंने कहा मामू जान मैं लेके आता हूँ, मेरा एक दोस्त है। तो ये अमिताभ बच्चन को लेके आए। अच्छा, तो तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा मेरा नाम अमिताभ है। पूरा नाम क्या? उसने कहा अमिताभ बच्चन। तो कहे कहीं तो मेरे दोस्त हरिवंश राय बच्चन के तो बेटे नहीं हो? उसने कहा जी, बाप की मर्जी से आए हो? उसने कहा जी, मालूम है पेरेंट्स को? उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले उनको लिखूँगा। तो फिर उन्होंने इनको हरिवंश राय जी को ख़त लिखा कि ऐसा ऐसा है, आप अगर इजाज़त दें। तो उन्होंने फिर तार से उनको जवाब दिया कि अगर आपके साथ काम कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते थे? उसने कहा मैं 1500 रुपये पे बैंड बॉक्स में कलकत्ते में करता था। मतलब अब नहीं करते? उन्हें कहा नहीं, मैं छोड़ के आ गया। अरे तुम छोड़ के आ गए, तुम्हें तो मैं पूरी फिल्म का सिर्फ 5000 दे सकता हूँ, मेरे पास इतना ही पैसा है। उन्होंने कहा आप मामू जान, आप जो भी दें मैं तैयार हूँ।
आगे की घटनाएं इतिहास हैं। अमिताभ बच्चन अब्बास के इस जेस्चर को कभी नहीं भूले। बाद में उन्होंने एक जगह सात हिंदुस्तानी की शूटिंग को याद करते हुए कहा
कि ऐसी सोच थी कि जिस तरह से ये सेनानी लड़े होंगे उसी तरह हम लोग इस फिल्म को भी बनाएंगे। तो हम लोग सब यहाँ मुंबई के रेलवे स्टेशन से गाड़ी में गए शूटिंग करने गोवा, 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ करके गए। और वहाँ पर जब भी अवसर मिला पैदल चलते थे हम लोग, अपना सामान वामान ढो करके। रहने के कोई होटल नहीं होता था, जहाँ सर्किट हाउस छोटे छोटे होते थे, जहाँ बिजली पानी वगैरह नहीं होता था, वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल किस्म का एक वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था, वहीं पर पूरा कास्ट क्रू सब एक साथ सोता था। चाहे आप कलाकार हों, चाहे आप कैमरामैन हों, चाहे आप स्पॉट बॉय हों, सब एक साथ वहीं सोते थे। उस ज़माने में होल्डऑल होता था, पता नहीं आप लोग होल्डऑल समझते हैं कि नहीं। आजकल पूरा बोरी बिस्तर जो है वो एक होल्डऑल में से बंद कर दिया जाता है, एक तरफ तकिया होता था, फिर बाकी सब रजाई वगैरह उसमें गोल ऐसे बांध करके उसे ले जाया करते। सब लोग अपना होल्डऑल खोलते थे, उसी के अंदर सो जाते थे, सुबह उसको लपेटा और चल पड़े। कई बार मैं रात को जब सो रहा होता था तो नींद उठती थी तो देखता था कि अब्बास साहब भी वहीं बगल में ही ज़मीन पर ही लेटे हुए हैं। और क्योंकि बिजली नहीं थी तो वो लालटेन लेकर के काम किया करते थे अगले दिन की डायलॉग्स लिखने के लिए।
ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में पहली बार पूरे भारत की नज़र अमिताभ के अभिनय पर गई और उन्हें 1972 में फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। राजेश खन्ना की जीवनी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं।
फिल्म का क्लाइमैक्स है कि राजेश खन्ना की मौत हो गई और अमिताभ उन्हें झिझोड़ रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, कैसे मर सकते हो तुम मुझसे बात किए बिना। और अचानक राजेश खन्ना की आवाज़ आती है पीछे से, जो कि वो टेप है, जो कि बड़ा दिलचस्प एडिटिंग टूल भी है अगर हम फिल्म मेकिंग की टेक्निक देखें तो। उस खास सीन के बारे में जब वो मरते हैं तो अमिताभ बच्चन उस वक्त उतने बड़े स्टार नहीं थे, तो वो बहुत घबरा रहे थे कि मैं कैसे करूंगा, ये इतना मौत का सीन है, मैं मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। तो महमूद उनके बड़े करीब थे तो अमिताभ ने पूछा कि महमूद भाईजान मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बड़ा परेशान हूं, दो रातों से सोया नहीं कि राजेश खन्ना के साथ डेथ सीन करना है, राजेश खन्ना का मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो उन्होंने कहा, महमूद ने बस एक लाइन कही कि तुम सोचो राजेश खन्ना वाकई मर गए, तो राजेश खन्ना मर गए हैं, समझ रहे हो इस बात को कितनी, मतलब राजेश खन्ना कौन है मालूम है ना, राजेश खन्ना मर गए, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा सीन।
मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा, 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम, बोलो बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे।
बाबूशाय बाबूशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं।
लेकिन व्यावसायिक सफलता के लिए अमिताभ को 16 और फिल्मों का इंतजार करना पड़ा। ये सफलता उन्हें जंजीर फिल्म में जाकर मिली। हाल ही में अमिताभ बच्चन की जीवनी अमिताभ बच्चन कलाइडोस्कोप लिखने वाले मशहूर पत्रकार प्रदीप चंद्रा बताते हैं।
अगर आपको 16 फिल्मों तक काम मिलता रहा, इसका मतलब आपने अपनी जगह ऑलरेडी बना ली थी। अगर न बनाई होती तो 3 फिल्मों के बाद आपको कोई नहीं पूछता। अगर वह 16 फ्लॉप के बाद तो दूसरा एक्टर अगर होता तो उसकी फिल्म कोई 4 के बाद 5वीं नहीं देखेगा। तो दैट शोज कि उन्होंने अपनी जगह तो ऑलरेडी दर्शकों के मन में बना ली थी। कभी कभी क्या होता है कि समय भी ऐसा होता है, आपका साथ देता है। ऐसा स्क्रिप्ट जिसको देवानंद ने रिफ्यूज कर दिया कि इसमें भाई रोमांटिक एंगल नहीं है, रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, राजकुमार ने रिजेक्ट कर दिया, धर्मेंद्र ने रिजेक्ट कर दिया। सोचिए इतना स्ट्रांग फिल्म जिसमें इतनी बड़ी हिट जो फिल्म हुई उसको इतने बड़े बड़े एक्टरों ने नकार दिया। इससे पता चलता है कि बच्चन जी जब कोई स्क्रिप्ट देखते थे या पढ़ते थे तो फिर भी उनके मन में होता था कि भाई इसमें हो सकता है कि मैं जो है बाजी पलट दूं, और वो हुआ भी।
तुम्हारा नाम शेर खान है?
इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर अब मुलाकात हो गई।
जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने पुराने दोस्त राजीव गांधी के अनुरोध पर राजनीति में प्रवेश किया और इलाहाबाद से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका मुकाबला था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा से। उस चुनाव को कवर करने वाली और द मैरी गोल्ड स्टोरी की लेखिका कुमकुम चड्ढा याद करती हैं।
पहले तो वो अपना रोल स्विच नहीं कर सके। ही केप्ट थिंकिंग दैट ही इज अ फिल्म स्टार कंटेस्टिंग इन इलेक्शन, तो वो कभी एक पॉलिटिकल लेवल पर आए ही नहीं। दूसरा, वो सर्किट हाउस में बंद कमरों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और अजिताभ उनके जो भाई हैं जिनके साथ वो बाद में फॉल थ्रू किए, अजिताभ आते थे, उनका रोल ये होता था कि लोगों को भगाना। तो सर्किट हाउस का गेट बंद रहता था, अमिताभ के कमरे का दरवाज़ा बंद रहता था, और वो जो बीच का ड्राइववे था वहाँ अजिताभ आकर हर रोज़ सुबह, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, चाहे लोग हों, क्योंकि लोग भी थे, चाहे वो वोटर्स हों, उन सबको भगाने का काम अजिताभ करते थे। एज अगेंस्ट दैट, बहुगुणा जी के आप घर पे जाएं तो आपको वेलकम किया जाता था, बहुगुणा जी सबसे मिलते थे, तो एक बहुत शार्प कॉन्ट्रास्ट था। उनकी रटी रटाई 5 या 6 सेंटेंसेस होते थे और हर रैली में वो वही लाइंस बोलते थे और उसी अंदाज में बोलते थे, तो उनको न्यूएंसेस इलेक्शन की समझ नहीं आई। हीट एंड डस्ट का उनको बिल्कुल वो नहीं था, और ये मैंने बाद में लिखा भी था कि अगर इलेक्शन ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल हार रहे थे, देयर इज नो क्वेश्चन, और अगर ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो जया की वजह से, क्योंकि शी केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, तो वो भाभी देवर मुंह दिखाई वाले वो जितने भी वाक्याए थे वो सब तब हुए।
लेकिन राजनीति में अमिताभ बहुत अधिक दिनों तक नहीं रह पाए। बोफोर्स घोटाले में नाम आने पर उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 70 के दशक के मध्यकाल और पूरे 80 के दशक में अमिताभ की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। कहा जाता था कि बच्चन की फ्लॉप फिल्में भी दूसरी हिट फिल्मों से अधिक व्यवसाय करती थी। 1991 में टाइम पत्रिका ने बच्चन के लिए एक वाक्य लिखा था कि बॉलीवुड में 1 से लेकर 10 स्थानों तक सिर्फ बच्चन ही काबिज है। बच्चन के जीवनीकार प्रदीप चंद्रा बताते हैं।
बच्चन जी में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात यह थी कि उनका पूरा लुक जो था बहुत एलिगेंट था। अगर बच्चन जी सूट पहने और कोई और एक्टर पहने, उनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, उनका सेंस ऑफ टॉकिंग, उनकी भाषा, मेरी जावेद अख्तर से बात हो रही थी तो जावेद साहब ने बताया कि भाई इनकी जो पंक्चुअलिटी और जिस तरह से इनका जो बिहेवियर ये सब था उसने इनको जो है बहुत फायदा दिया। क्योंकि उसके पहले तो फिल्मों का ये था कि भैया एक्टर 12 बजे का दो बोलो तो 4 बजे आएंगे, उसके बाद किसी के कोई नशे में आ रहे हैं, कोई अपना चमचों का ट्वीट लेके आ रहा है, ये 7 बजे का शिफ्ट होगा तो ये 6:30 बजे जाके अपनी कार में बैठ जाएंगे।
बच्चन की सफलता का राज है उनकी शिष्टता, उनका कपड़ा पहनने और बातचीत करने का तरीका और उनकी भाषा दूसरे फिल्म कलाकारों से काफी भिन्न है। प्रदीप चंद्र एक दिलचस्प किस्सा याद करते हैं।
एक दिन मुझे एक शूट करना था तो मैंने बच्चन जी से कहा स्पेशल नंबर के लिए, ये बच्चन जी ऐसा फोटो शूट करना है जिसमें दिखे कि आप बंबई में हो। तो कहने लगे बताओ। तो बात हुई कि टैक्सी में हम जाके शूट करेंगे। तो फोन आया उनके ऑफिस से कि 7 बजे के लगभग वो कहीं जाने वाले हैं, तब आप जो है आ जाइए। थोड़ी देर बाद मेरे मन में आया कि टैक्सी से अगर रात को जाएंगे तो एक तो अंधेरा रहेगा, अवेलेबल लाइट में फोटोग्राफी नहीं हो पाएगी और फ्लैश से लेंगे तो बहुत फ्लैट होगा। तो मैंने सोचा मैं कुछ और करूंगा। खैर मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि 7 बजे बहुत लेट हो जाएगा, कुछ जल्दी कर सकते हैं क्या? तो ये हुआ कि 5 बजे आ जाइए। तब तक मेरे दिमाग में कुछ और आइडिया आया और मैंने क्या किया कि एक मैं जूते पॉलिश वाले के पास गया और मैंने उससे कहा कि भाई एक आदमी का जूता पॉलिश करना है मगर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा और 1 घंटे का समय लगेगा। तो उसने कहा 1 घंटे का तो मैं 100 रुपया लूंगा। मैंने बिठा लिया उसको और बच्चन जी के घर के जरा सा आगे एक पेड़ था उसके नीचे मैंने कहा तुम अपनी यहाँ दुकान लगा लो। उसने दुकान लगा लिया। तो जब मैं गया जलसा में तो बच्चन जी आए एकदम तैयार थे, टाई वाई लगाए हुए थे। मैंने कहा बच्चन जी थोड़ा सा चेंज हो गया है। बोले क्या? मैंने कहा जूता पॉलिश करवाना है आपको। बोले अरे कहाँ जूता पॉलिश करवाने जाएगा। मैंने कहा कहीं ज्यादा दूर जैसे जाने की जरूरत नहीं, बाहर ही पॉलिश वाला बैठा हुआ है। बोले चलिए। तो आए बाहर और आके खड़े हो गए और जूता पॉलिश करवाने लगे और मैं थोड़ी दूरी पे जाके जूम लेंस से उनकी फोटो ले रहा था। उसी समय एक मशहूर अखबार के मैगजीन के एडिटर जो बहुत करीब थे बच्चन जी के, वो वहां से कार से गुजरे और उन्होंने मुझे भी देखा और बच्चन जी को भी देखा। तो अगले दिन उनका फोन आया कि प्रदीप कल मैंने तुमके बच्चन को डुप्लीकेट को फोटोग्राफ करते देखा। मैंने कहा भाई वो डुप्लीकेट नहीं थे, वो अमिताभ बच्चन जी ही थे। जब बच्चन जी का शूट हो गया और वो चले गए अंदर तो इस पॉलिश वाले को जब मैंने 100 रुपया दिया तो उसने मुझे कहा सर अगर आप मुझे पहले बताते कि बच्चन जी का जूता पॉलिश करना है तो मैं आपको 200 रुपया देता।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
अमिताभ बच्चन पर रेहान फजल की विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और आप बात क्रिकेट की, पुणे में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 601 रनों पर घोषित कर दी है और कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के साथ चल रहे इस मैच में 254 रन बनाए हैं और वो भी नॉट आउट। और इसमें दक्षिण अफ्रीका ने खेलते हुए 3 विकेट पे 36 रन बना लिए हैं और दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सृष्टि श्रीवास्तव से।
BBC समाचार। यूरोपीय संघ के राजदूतों ने ब्रिटेन के साथ ब्रेग्जिट वार्ता को तेज करने के लिए अपने मुख्य वार्ताकार मिशेल बार्नियर को हरी झंडी दे दी है। पहली बार अंतरिक्ष यान से बाहर कदम रखने और अंतरिक्ष में चलने वाले व्यक्ति रूसी कॉस्मोनॉट एलेक्सी लियोनोव का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। साल 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को दिया जाएगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।